You are listening to SRM Podcast, podcast for everyone.
दुनिया भर की भसड़, हफ्ते भर का बवाल. Welcome to our podcast, India on Call. मैं हूं आदित्य और मेरे साथ मौजूद है मेरे साथी अभिषेक. हेलो अभिषेक.
हेलो आदित्य भाई, क्या हाल चाल?
बिल्कुल बढ़िया, आप बताओ कैसे चल रहा है सर?
बस सही चल रहा है. पिछले हफ्ते बहुत बवाल हुआ है,
काफी ज्यादा बवाल हुआ है. इवन कल सुबह के एनकाउंटर को मर्डर कहा जा रहा है और उस पर काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी भी हो रही है. एक पक्ष जो है यूपी में काफी उसका विरोध भी कर रहा है.
सही कह रहा है, यूपी में ही नहीं भारतवर्ष में अब इसके खिलाफ एक PIL वगैरह भी फाइल होनी शुरू हो गई है. लोग कह रहे हैं कि ये एनकाउंटर नहीं बल्कि फेक है, फेक एनकाउंटर है. पूरी फिल्मी कहानी जॉली एलएलबी से मिलती भी कह रहे हैं सब.
हाँ, और उसके सिवा हम एक चीज पे और बात करेंगे सब पे, वो है चाइना. मतलब चाइना जो है अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा है. पहले तो वो गलवान में कुछ अपना क्लेम्स दे रहा था, उसके बाद अभी उसने भूटान में भी कर दिया है. और जबकि भूटान में उसने वेस्टर्न और सेंट्रल एरिया में किया था हमेशा से, अभी पहली बार उसने ईस्टर्न पार्ट में भी अपना क्लेम कर दिया है.
चाइना का काम ही यही है कि जितने भी छोटे या उसको लगता है कमजोर देश है, उसकी नजर में जो कमजोर देश है उसके साथ उसको बवाल करने की आदत ही है. अभी रशिया के साथ कभी भी इतना ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है, लेकिन रशिया के साथ कभी उसकी बाउंड्री डिस्प्यूट नहीं हुई. जितने भी छोटे देश हो, चाहे वो वियतनाम हो, भूटान हो, इंडिया हो, इंडिया तो खैर बड़ा देश है, इंडिया को तो खैर वो बुली नहीं कर सकता, लेकिन जितने भी छोटे देश हैं, फिलीपींस, ब्रुनोई जो इतना छोटा सा देश है, एक शहर के बराबर एक देश है, उसके साथ भी उसके कुछ ना कुछ लफड़े या परेशान करना उसकी आदत है. वो बुली कंट्री है एक तरह से देखा जाए. बात करेंगे इसके बारे में आगे.
आगे बात करेंगे इसके बारे में. लोग शुरुआत करते हैं विकास दुबे से.
शुरू करते हैं
तो अभिषेक, विकास दुबे का जो किस्सा है, जैसे हमने जो विकास दुबे के बारे में जो जानते हैं, जो न्यूज चैनलों में आ रहा है कि विकास दुबे बचपन में ये करते थे, तो फिर ये यहाँ से पढ़ाई की फिल्म की ये कहानी है, ऐसे मर्डरर बने, ऐसे इन्होंने ये किया, तो इस बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे. हम लोग कुछ ऐसी बातें करेंगे जो कि लोगों के जहन में जाए और वो मनोरंजन से ज्यादा हो. जैसे कि आपने बताया कि उनकी जो डेथ हुई है, उनके जो एनकाउंटर हुआ, उसको फेक एनकाउंटर कहा जा रहा है, और एक तरीके से कस्टोडियल डेथ है या मर्डर है लोग कह रहे हैं.
बिल्कुल बिल्कुल, मर्डर ही है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि कुछ भी, एक तो कुछ गाइडलाइंस जो इशू की गई है टाइम टू टाइम, चाहे वो NHRC द्वारा चाहे सुप्रीम कोर्ट द्वारा, कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है वो क्यों नहीं फॉलो किया गया. मतलब अगर आदमी को आपने किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया है तो यू हैवंट हैंडकफ्ड हिम, मतलब आपने उसको हथकड़ी नहीं पहनाई, आपने उसको बाकी मेजर्स नहीं लिए ताकि ना वो भाग सके या किसी भी सूरत हाल में वो भाग सके या कुछ या हाथापाई कर सके. और एक अकेला आदमी इतने लोगों के बीच में कैसे, मतलब भागने की सोचेगा या उनसे भिड़ने की सोचेगा, ये सोचिए सबसे बड़ी बात. इसलिए इस पे क्वेश्चन उठ रहे हैं बहुत ज्यादा कि पुलिस कस्टडी में जब इस तरीके के एनकाउंटर होते हैं तो उनमें बहुत ज्यादा शक जाने लगता है. अब इसकी भी बहुत सारे इसमें दिक्कतें हैं. हम सबसे बड़े इशूज ये हैं कि भाई जो लोगों के अंदर उत्साह जनरेट हो जाता है ना, कि जो कोई भी क्रिमिनल मरता है, चाहे वो हैदराबाद में चार जो रेप एक्यूज थे उनका एनकाउंटर हुआ, एक एकदम से जस्टिस पाने की जो होड़ लगी हुई है कि तुरंत जस्टिस चाहिए, वेट नहीं कर सकता. तो इस ये जो एक तरह से धारणा बन रही है वो भी बहुत एक तरह से गलत दिशा में जा रहे हैं हम लोग.
क्योंकि मुझे खुद ऐसा लगता है कि अगर कोई आरोपी है, अगर उसके गुनाह को कोर्ट के सामने मान लिया गया है कि उसने ये सारी चीजें की हैं, तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, पर संविधान के अंतर्गत.
बिल्कुल,
उसके साथ ये नहीं होना चाहिए कि उसको एनकाउंटर कर दिया गया, उसके बाद जो है जनता उसके एनकाउंटर को सेलिब्रेट करने लगे.
बिल्कुल,
भारत जो देश है हमारा, गांधी का देश है, नेहरू का देश है, वहां पे हम किसी की डेथ को सेलिब्रेट नहीं कर सकते, ये तो बहुत ही ज्यादा गलत चीज है.
बिल्कुल भाई बिल्कुल, सेलिब्रेशन मतलब सेलिब्रेट करो अगर वो सही से, अगर मतलब एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ द्वारा अगर उसको सजा मिली. एक तरीका होता है कि आदमी अरेस्ट हो, उसके ऊपर ट्रायल चले, उसके ऊपर चार्जेस फिक्स हो, फिर वो अपने आप को उन चार्जेस से डिफेंड करे अपने आप को, ठीक है, और उसके बाद जब वो गिल्टी प्रूव हो जाए कोर्ट द्वारा या जस्टिस सिस्टम द्वारा, तब उसको कन्विक्ट या एग्जीक्यूट किया जाए. ये एक प्रोसेस है जो फॉलो होना चाहिए बाय द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो कि हमारा आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी भी यही बात करता है कि स्टेट कैन नॉट डिप्रैक्ट समवन एनीवन ऑफ देयर लाइफ unless it is procedure, except the procedure established by law. मतलब कोई भी state मतलब कोई भी तंत्र हो गया, कोई भी विभाग, सरकारी विभाग हो गया, किसी व्यक्ति को का जीवन का हक नहीं छीन सकता जब तक वो प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ नहीं हो, मतलब वो लीगल कानून के अंतर्गत ना हो। कानून क्या कहता है, कानून कहता है कि उसके ऊपर ट्रायल चलना चाहिए, फिर चार्जेस फिक्स हो, वो डिफेंड करे, फिर गिल्टी हो, तब जाके एग्जीक्यूशन हो। लेकिन ये जो एकदम से जो एनकाउंटर किलिंग है यार, ये सब है जो इसको लोग बढ़ावा भी दे रहे हैं और लोग बहुत उत्साहित हो जाते हैं, तुरंत जस्टिस मिल गया, ये जस्टिस नहीं है भाई, ये कभी भी किसी के भी साथ हो सकते हैं। और सब स्टेट इतना पावरफुल हो जाए ना तो वो किसी के लिए भी खतरा हो सकता है, वो नेक्स्ट टू गॉड हो जाएगा।
और मुझे लगता है इस चीज की शुरुआत जब से एसटीएफ का गठन हुआ और श्री प्रकाश शुक्ला का एनकाउंटर हुआ यूपी में, जो कि गोरखपुर में एक काफी बड़े गैंगस्टर थे, उसके बाद उन्हीं के शायद नाम पे एसटीएफ बनी थी, एसटीएफ उनको ढूंढ रही थी, उनका एनकाउंटर हुआ, उसके बाद भी काफी ये बातें सामने आई कि हो सकता है ये फेक एनकाउंटर। वहां से जो चीजें चलती आ रही हैं, एक तो पहले लार्जर देन लाइफ गैंगस्टर आ जाते हैं, ठीक है, उनका समाज में काफी ज्यादा बोलबाला होता है, जब उनका एनकाउंटर होता है या पकड़े जाते हैं तब वो खबरों में आते हैं, वरना वो नॉर्मल जिंदगी जी रहे होते हैं, बड़े से लेकर के छोटे आदमी तक सब उनके आसपास रहते हैं, शहर में खुला रहते हैं, और उसके बाद जो उनका एनकाउंटर कर करके पुलिस अपने आप को ग्लोरीफाई कर देती। तो ये जो पुलिस एनकाउंटर से जुड़ी चीजें हैं, इसके बारे में क्या क्या गाइडलाइंस हैं या क्या क्या कहा गया है किसी जज ने या कोई भी मानव ह्यूमन राइट कमीशन ने?
हाँ आदित्य, बिल्कुल हम इस पे चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि सबसे बड़ा ये क्या है कि एकदम से जो आदमी जो क्रिमिनल खुला घूमता रहता है, जैसे विकास दुबे के भी केस में था 2001 में, इसने स्टेट मिनिस्टर का मर्डर किया जो कि बीजेपी गवर्नमेंट से ही था, ठीक है, उसके बाद ही अब तक अपनी लाइफ जी रहा था 19 साल तक बढ़िया से, जितने वो भी इसने मर्डर किया था पुलिस थाने के अंदर जाके, और जितने भी 25 पुलिस वाले थे उसको, उसके मतलब जो वो थे विटनेस थे 25 पुलिस वाले, उन वो सबने विटनेस मुकर गए कोर्ट में जाके कि नहीं भाई इसने नहीं किया। 19 साल तक वो खुला घूम रहा था। और जो ये इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो पॉलिटिकल पुलिस और क्रिमिनल नेक्सस है ना, सबसे बड़ा कारण ये है कि जब तक आज वो क्रिमिनल जो पॉलिटिकल पार्टी के इशारे पे नाचता है या उनको सपोर्ट करता है, तब तक उसको पुलिस का भी और पॉलिटिकल पार्टी का भी दोनों का साथ मिल जाता है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा अलग राह बनाने की कोशिश करता है उसका एनकाउंटर हो जाता है। आपको नहीं लगता है कि ये पैटर्न है बहुत ज्यादा?
वही तो मैं कह रहा हूँ कि श्री प्रकाश शुक्ला से ये शुरू हुआ और ये अभी विकास दुबे तक जुड़ा हुआ है और ना जाने कितना आगे तक जाएगा। तो जैसे विकास दुबे की हत्या ही कह ले एनकाउंटर हुआ, तो उसके साथ साथ मुझे नहीं लगता इतने सारे पुलिसकर्मी थे तो केवल एक एनकाउंटर ही चारा बचा होगा अगर वो भाग भी रहा होगा तो। दूसरी चीज मुझे ये है कि जो विकास दुबे के बारे में इतने सारे सवाल उठाए जा रहे थे कि उनका कई सारे राजनीतिक संगठनों से जुड़े होंगे, उनके पीछे के इतने सारे राज हैं, तो वो राज के राज दबे रह गए। तो हो सकता है कि अगर उनको पकड़ा जाता, उनसे पूछताछ की जाती, तो बहुत ही सारी चीजें सामने आती पब्लिक इंटरेस्ट में। तो आपने वो सारी चीजों को दबा दिया हमेशा के लिए।
सबसे बड़ी बात है जो फेक एनकाउंटर होते हैं ना, दे आर टू सर्कमवेंट लीगल प्रोसीजर्स, मतलब लीगल प्रोसीजर को बाईपास करने के लिए बने रहते हैं। और इसी सिलसिले में 2014 में जो PUCL, एक पीपल्स यूनियन सिविल लिबर्टी, एक सिविल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, सिविल सोसाइटी है जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है, पीपल्स यूनियन सिविल लिबर्टी, उसका और स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का एक केस है, PUCL वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2014, जिसमें उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो जस्टिस लोधा थे और RF नरीमन थे, उन्होंने कहा था अगर इस तरीके के जितने भी फेक एनकाउंटर्स होते हैं या सो कॉल्ड फेक एनकाउंटर्स होते हैं, वो एकदम से मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड बाय इंडिपेंडेंट एजेंसी, एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा ये सब इन्वेस्टिगेट होने चाहिए, ये उनका एक कहना था। उसके अलावा बहुत सारी गाइडलाइंस हैं जो कभी भी फॉलो नहीं की जाती। उसके अलावा भी NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने एक 16-point गाइडलाइंस दिया था। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ने एक 16-point गाइडलाइंस दिया टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ पावर, मतलब ये जो पुलिस सिस्टम है ये सिर्फ कई बार मिसयूज ही नहीं अब्यूज करता है पावर, जिससे फेक एनकाउंटर हो गया लोगों, एक एक आपको याद है 2016 में भी एक केस था शायद वो विवेक तिवारी करके,
जी 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 जी
सर, वो अमेजोन या एप्पल में कंपनी में काम करता था, मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा,
एप्पल कंपनी में काम करता था और लखनऊ में उसका जो है एनकाउंटर हुआ था।
तो अब क्या है, फ्री हैंड दिया गया था यूपी में योगी आदित्यनाथ द्वारा कि भाई अब क्रिमिनल्स को मारो, और वो क्रिमिनल्स को मारने के बजाय अगर आप एक 2016 में ही एक इंडिया टुडे ग्रुप का एक स्ट्रिंग ऑपरेशन उनका वो हुआ था, उसमें ये निकल के आया था कि अगर आप 8 लाख रुपए देते हो किसी थाना इंचार्ज को तो वो तैयार हो जाता है आपके कंपटीटर को बिना किसी भी जुर्म के आप उसको उसका इनकाउंटर करने में, समझ रहे हो? तो जो फ्री हैंड दिया पुलिस को ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। और हाँ, अब हम आते हैं NHRC की और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस पे जिन्होंने पुलिस की अब्यूज ऑफ पावर को रोकने के लिए बात कही है, जिसमें ये सब चीजें लिखी गई है, ध्यान से सुनना देते, ठीक है? पहला कि अगर किसी को पुलिस को टिप ऑफ मिलती है कि भाई इतना बड़ा क्रिमिनल यहाँ देखा गया है या कोई गलत गतिविधियां हो रही है, तो उस टिप ऑफ को उनको रिकॉर्डिंग जरूरी रखनी है उनको अपने साथ, ठीक है? दूसरी बात, अगर एनकाउंटर होता है तो उस एनकाउंटर का भी FIR आपको रजिस्टर करना पड़ेगा और एक इंडिपेंडेंट एजेंसी जैसे CID द्वारा उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। इसके अलावा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को तुरंत इस प्रकार के किसी भी एनकाउंटर के बारे में जानकारी देनी चाहिए। अगर जो भी घायल है जिनका एनकाउंटर हुआ है उनको तुरंत मेडिकल का उपचार देना चाहिए। उसके अलावा कोर्ट में FIR, पुलिस डायरी, वेपन, जिस वेपन से आपको आपने क्रिमिनल को मारा है वो वेपन आपको सरेंडर करना पड़ेगा पुलिस को, ठीक है? चाहे वो फेक एनकाउंटर हो चाहे रियल एनकाउंटर हो, वो आपको वेपन सरेंडर करना पड़ेगा। उसके अलावा जो उसके रिश्तेदार है उसको भी तुरंत इन्फॉर्म करना पड़ेगा। साल में 2 बार बाय एनुअल रिपोर्ट जाएगी कि इतने इतने क्रिमिनल्स को एनकाउंटर हुआ है, उसके बारे में सारी एक रिपोर्ट जाएगी कोर्ट के पास। उसके अलावा अगर परिवार वालों को लगता है कि भाई ये गलत एनकाउंटर हुआ है तो उनके ग्रीवांस का भी रिड्रेसल करना पड़ेगा। तो ये सारे गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट और NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने दिए हैं, वो कभी भी मुझे नहीं लगता कि इस तरह के फेक एनकाउंटर्स में फॉलो किए जाते। उसके अलावा और भी हैं, जैसे NHRC ने एक चीज जब एक रिपोर्ट में पाया कि सबसे बड़ी बात ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो होता है गिरफ्तारी के बाद, जैसे हैंडकफ करना, हथकड़ी लगाना, वो फॉलो नहीं करते हैं पुलिस वाले, प्रॉपर फिजिकल कस्टडी में नहीं रखते हैं। जो प्रॉपर फिजिकल कस्टडी होती है, आंखों में पट्टी बांधना, उसके हाथों में हथकड़ी लगाना, ये सब कुछ भी नहीं किया गया। जब वीडियो उसकी वायरल हुई जो आराम से टैक्सी में बैठा हुआ है, ये सब कोई भी स्टैंड SOP फॉलो नहीं हुआ, मतलब क्या दिखाना चाह रहे थे वो लोग। साथ ही साथ पुलिस को ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी इन सब मामलों में। तो ये सब गाइडलाइंस है। बस एक बात और जोड़ दूं मैं बस, कि जस्टिस AN मुल्ला जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के थे, उनका एक कथन है, बस मैं वो बोलता हूँ फिर। देर इज नॉट अ सिंगल लॉलेस ग्रुप इन द कंट्री हुज रिकॉर्ड ऑफ क्राइम्स कम्स एनीवेयर नियर द पुलिस। उन्होंने कहा कि भाई पुलिस जितनी बड़ी गुंडी कोई है ही नहीं, सिंपल शब्दों में उनके बड़ा जितना कोई गुंडा देश में है नहीं। ये जस्टिस AN मुल्ला जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस हैं थे, उनका ये कथन है।
काफी बड़ी बात बोल दी उन्होंने, क्योंकि रियल लाइफ में भी जो पुलिस है, मतलब नॉर्मल अगर आप लोग बोले तो पुलिस इसलिए बनी है कि लोगों की रक्षा करने के लिए बनी है, लेकिन आप अपने गली मोहल्ले में अपने शहर में देखें तो लोग पुलिस से डरते हैं। तो इस बात बारे में जो जस्टिस हैं उनका कथन बहुत ही सही है कि पुलिस से बड़ा गुंडा कोई नहीं है। हालांकि पुलिस की भी मतलब कोई पुलिस की भी मुझे लगता है कुछ मजबूरियां रहती हैं, क्योंकि पुलिस के पास एक तो वर्कलोड मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा है।
बिल्कुल।
और कोई भी त्योहार हो, सर्दी हो, गर्मी हो, जाड़ो, जैसे अभी कोरोना का दौर चल रहा है, तो मेरे जानने में पुलिस वाले जो कि 17-17, 18-18 घंटे काम किए हैं।
हाँ भाई बिल्कुल।
तो इस चीज को भी सही करने के लिए, जो फेक एनकाउंटर हुआ या कुछ भी चीज हुई, तो उसको भी सही करने के लिए पुलिस तंत्र को सही करना जरूरी है।
हाँ बिल्कुल।
तो आपको क्या लगता है पुलिस तंत्र को सही करने के लिए क्या?
पुलिस के बारे में वो तो एक पक्ष हो गया कि भाई पुलिस इस तरह के काम करती है, लेकिन वो सब सिर्फ और सिर्फ वही काम फॉलो चीज करती है जो पॉलिटिकल निर्देश दिया जाता है। जो एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बॉडी उसको निर्देश देती है, वही ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव बॉडी उसको एग्जीक्यूट करती है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी दिक्कत है पुलिस वाले के भी कुछ ह्यूमन राइट्स होने चाहिए। जैसे कि पहले ही 30% वैकेंसी है पुलिस फोर्स में। यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से हर 1 लाख व्यक्तियों में 144 पुलिस वाले होने चाहिए, लेकिन भारत में यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से हर 1 लाख व्यक्तियों में 222 पुलिस वाले होने चाहिए, लेकिन भारत में सिर्फ 144 है। उसके अलावा जो हाईली ओवरवर्क्ड है हमारी पुलिस फोर्स, मतलब अगर 8 घंटे की नौकरी है तो 8 घंटे के बजाय वो 15-16 घंटे काम करती है, और सर हम हर एक क्षेत्र में काम करते हैं। जैसे कोरोना में कोरोना में भी लोगों को समझा रही है, अंदर कर रही है, पूरा कोरोना में भी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है, क्रिमिनल से भी लड़ रही है, चोरों से भी लड़ रही है, लोगों को भी अंदर कर रही है, लोग भी नहीं समझ रहे कि नहीं भाई नहीं बाहर निकले, पूरी जिम्मेदारी,
लोगों की मदद भी कर रही है कि घर जाकर के दवाई पहुंचा रही है, खाने का सामान पहुंचा रही है,
ये सब एक पक्ष है पुलिस का जो बहुत ही बढ़िया पक्ष है, ठीक है। उसके अलावा उनके पास ना रिसोर्सेज भी नहीं है ना अच्छे ना, तो उनके अगर थाने में चले जाओ तो ना तो अच्छा पानी की सुविधा होगी, ना टॉयलेट की सुविधा होती है, बेसिक चीज भी थानों में लैकिंग होती है। भूल जाइए कि आपके आपके पास उनके पास क्या हो, अच्छे इक्विपमेंट्स हैं कि नहीं है, लेकिन जो बेसिक नेसेसिटी है पानी और सैनिटेशन, वो तक उनके पास अवेलेबल नहीं रहता। ट्रेनिंग उनकी अच्छे से नहीं होती है, अच्छे से फिजिकल फिटनेस नहीं रख पाते वो आगे चल के, त्यौहार व्रत त्यौहार में भी वो अपनी ड्यूटी करते हैं, और सबसे बड़ी बात वो एक तरह से पपेट बन जाते हैं, जो हमारे संविधान की ही देन है, जिसने बहुत ज्यादा पावरफुल दे रखा है, रिप्रेजेंटेटिव्स को बहुत पावरफुल बना रखा है, चाहे एमपीज हो चाहे एमएलएज हो, उनके पपेट बन के रह जाते हैं, बहुत बार ऐसे केसेस में देखे गए। और जो एक होता है ना ट्रांसफर, सबसे बड़ा जो हथियार होता है किसी भी पुलिस वाले को पनिश करने के लिए, तो ट्रांसफर का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। और इसके पीछे भी प्रकाश सिंह बादल की गाइडलाइंस आई थी सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई कोई भी पुलिस वाला जो हायर लेवल का है उसको 2 साल से पहले कहीं भी आप ट्रांसफर नहीं करेंगे, एटलीस्ट 2 साल तक वो अपने कार्य क्षेत्र में एक कार्य क्षेत्र में काम करेगा, ठीक है। तो ये सब भी कभी भी फॉलो नहीं किए जाते हैं एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट द्वारा, तो ये बहुत बड़ी सब दिक्कत है, इन सबको हमको सॉल्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके अलावा जो हमारी जनता जो फास्ट मतलब तुरंत जस्टिस चाहती है, इसका भी सबसे बड़ा कारण है कि बहुत ज़्यादा जस्टिस डिले होता है, कहावत है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। उसके अलावा आपने भी कुछ बात कही थी शायद, मैं बोल रहा हूँ,
हाँ मैंने कहा था कि जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड,
हाँ
मैं कह रहा था कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, पर जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड। जैसे कि जो हैदराबाद वाला रेप केस था, तो वो लोग रेप कन्विक्ट, मतलब लोगों के ऊपर शक था और पूरी तरीके से सबूत नहीं मिले थे अब तक कि उन्होंने रेप किया, हालांकि बहुत ही ज्यादा इल्जाम था और सब मान रहे थे कि इन्होंने किया है। उनको पुलिस ले जाती है, सीन को रिक्रिएट कराती है और फिर कहती है कि वो भाग रहे थे, उन्होंने मार दिया, और जब पुलिस लौटती तो उनके ऊपर फूल बरसाई जाती है। पर होता क्या है कि उसकी जांच नहीं हुई आगे, तो क्या पता अगर जांच होती तो कुछ और पहलू सामने आते, तो हो सकता है कि शायद क्या पता कोई और आदमी हो जो रह गया।
बिल्कुल सही भाई,
जैसे कि जो विकास दुबे का केस है, तो विकास दुबे के साथ ना जाने कितने लोग उसके हर चीज में इन्वॉल्व होंगे जिनका नाम हमको पता भी नहीं है, ना विकास दुबे ने कभी ये ऑफिशियल तौर पर किसी को बताया होगा औपचारिक तौर पर उनके नाम रह गए, अब हमको उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है।
एक एक एक, एक सबसे बड़ा कारण है हमारा जो जस्टिस सिस्टम इतना टाइम लेता है, वो इस बेसिस पे बना है कि भाई 10 गुनहगार आदमी भले ही छूट जाए, भले ही उनको सजा ना हो, लेकिन एक व्यक्ति जो कि गुनहगार नहीं है, जो कि निर्दोष है, उसको सजा ना मिले, यही इसी चीज को बचाने के लिए या इसी चीज को बनाए रखने के लिए जो हमारा जस्टिस सिस्टम है या जुडिशरी है बहुत टाइम लेती है। उसके अलावा भी बहुत कारण है, जैसे 40% वैकेंसी है, अभी भी जजेस की कमी है, 28 मिलियन पेंडिंग केसेस हैं लगभग 2-3 करोड़ के आसपास। टीएस ठाकुर 2016 में जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, वो प्रधानमंत्री के आगे रोए थे कि भाई प्लीज जुडिशरी सिस्टम की बहुत भद उड़ रही है, उनके ऊपर भी क्वेश्चंस करे जा रहे हैं, प्लीज कुछ करिए, प्लीज भर्तियां करिए वैकेंसी में, और अगर वैकेंसी ज्यादा होगी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे तो बहुत कम चांसेस है कि जुडिशरी सिस्टम में करप्शन भी कम होगा और इफेक्टिविटी और इफेक्टिवनेस दोनों बढ़ेगी, सही जजमेंट भी होंगे और जल्दी जल्दी जजमेंट भी होंगे। लेकिन इस मामले में भी कुछ कदम नहीं उठाए जा रहे हैं अभी तक, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। अब बाकी देखते हैं क्या होता है, अब आप बताएं क्या आपकी सोच है इस बारे में।
मुझे एक चीज ये भी लगती है कि थोड़ा सा ये सब जो मामले जो जैसे विकास दुबे से थोड़ा हटके मामला हो गया कि वैकेंसी वगैरह का, चलो मेन मुद्दे की बात करें तो उससे थोड़ा हटके, पर इसमें थोड़ा सा मोटिवेशन भी चाहिए होता है गवर्नमेंट को कि वो वैकेंसी लाए, क्योंकि खाली तो हर जगह वैकेंसी है, तो गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा जो उस समय की मौजूदा गवर्नमेंट रहती है, जैसे अब जरूरी नहीं कि अभी की गवर्नमेंट ने ऐसा किया हो, पहले की जो सरकारें हैं उन्होंने भी कभी उन्होंने भी इस चीज पे ध्यान नहीं दिया कि हमको तंत्र को मजबूत करना पड़ेगा, बल्कि इस बात पे ध्यान दिया कि जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो।
नहीं भाई, ये सब करेक्टेड है, क्योंकि जो लोगों को एकदम से तुरंत जस्टिस की भावना आई है ना कि एनकाउंटर किलिंग इज द बेस्ट, वो इसीलिए आई है कि जो जुडिशरी है वो बहुत टाइम लगा रही है, और सबसे बड़ा टाइम लगाने का कारण है कि वैकेंसी है वहाँ पे। वैकेंसी इसीलिए है कि मतलब जो वर्क फोर्स है उसकी कमी है आपको, मतलब वैकेंसी मतलब ये नहीं कि वैकेंसी निकाले गवर्नमेंट, ऑलरेडी जो ओवर बर्डन है जितने भी जजेस हैं ओवर बर्डन है। जब आप आदमी को ओवर बर्डन करेंगे तो आपको उसकी एफिशिएंसी भी घटेगी और इफेक्टिवनेस भी घटेगा। तो जितने जजेस चाहिए उतने जजेस नहीं है इतने सारे केसेस को हैंडल करने के लिए, इसीलिए ये वैकेंसी मतलब वैकेंट है। मतलब जितनी जरूरत है मतलब 100 लोगों की जरूरत है तो केवल 70 लोग ही काम कर रहे हैं, 30 लोग अभी भी कम पड़ रहे हैं, और इसी वजह से देरी होती है और इसी वजह से ये जो तुरंत जस्टिस की मांग है जैसे एनकाउंटर में खुशी मनाना ये सब, ये इसी वजह से होता है, समझ रहे हैं? ये सब आपस में लिंक है मुझे तो ऐसा लगता है।
सही बात है। तो फिर आप विकास दुबे की जो एनकाउंटर है कस्टोडियल किलिंग है इसके बारे में आप कुछ और भी ऐड करना चाहेंगे कि हम अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़े?
बस जितना बोलना था इसमें बोल लिया, बहुत हो गया। विकास दुबे जी वो भी अपने जहां होंगे सोच रहे होंगे भाई क्या कर दिया हमने। अब विश्व के गुंडे की ओर बढ़ते हैं। अभी तो लोकल गुंडा था यूपी का, विश्व का गुंडा हमारा चाइना।
बिल्कुल बिल्कुल, विश्व का गुंडा है चाइना। चाइना आजकल गुंडा ही पर उतर आया है और वो जो है उसके चाइना ने पहले तो गलवान में क्लैश किया, 2 साल पहले डोकलाम में भारत से क्लैश हुआ था उसका, और फिर अब जाकर के वो भूटान में फिर से करने लगा है। भूटान पर वो हमेशा अपनी पूरी नजर रखता ही है, उसके 2 हिस्सों में उसने रखी थी। तिवारा इस बार कुछ ऐसा हुआ कि GEF करके एक पर्यावरण से जुड़ी संस्था है उसने कुछ फंड पास किए थे और वो अपने कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहती थी। तो जब वो ईस्टर्न पार्ट में पहुंची और वहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम उसने करना शुरू किया तो चाइना ने कहा कि ये लैंड जो है ये कंट्रोवर्सी में है और जब इसका पूरी तरीके से हल निकल आएगा उसके बाद ही आप यहाँ पर कुछ कर सकते हैं। तब जाकर के भूटान को पता चला कि भाई यहाँ पे तो ये चाइना कब्जा दिखा रहा है अपना। तो अभिषेक जी क्या हुआ था?
हाँ भाई थोड़ा आपने सही बोला है लेकिन थोड़ा सा करेक्शन है उसमें। जैसे कि क्या हुआ, एक ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी एक नाम एक संस्था है, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बेस मतलब उसका जो हेड ऑफिस है वो है वॉशिंगटन DC जो कि USA में एक USA की कैपिटल भी है, वहाँ पर उसका हेड ऑफिस है। लेकिन ये एक इंडिपेंडेंट संस्था है, इसका USA से कुछ लेना देना नहीं है। 183 कंट्रीज के साथ साथ सिविल सर्विस सिविल ऑर्गेनाइजेशन सिविल सोसाइटीज उसके अलावा जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं ये सब इसमें जुड़े हुए हैं और एनवायरनमेंट से रिलेटेड काम करते हैं। मतलब अगर कहीं पर पेड़ कट रहे हैं और वहाँ पर फैक्ट्री लगनी है तो वहाँ पर वो फंडिंग प्रोवाइड करते हैं कि पेड़ कम से कम कटें और फैक्ट्री ऐसी लगे जो कि रिन्यूएबल एनर्जी पे बेस्ड हो, एक सिंपल ड्रिंक, ताकि क्लाइमेट चेंज से हमें निजात मिले। क्लाइमेट चेंज से मिटिगेशन और एडेप्टेशन दोनों के काम करते हैं, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड या जितने भी हार्मफुल गैसेस उनका उत्सर्जन हो रहा है उसको उसकी रोकथाम कैसे हो उस पर भी काम करता है। साथ ही साथ अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो लोग कैसे अडेप्ट करें, जैसे अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो जो खेती है खेती पे भी असर पड़ता है, यील्ड जो होती है खेत की उस पर भी असर पड़ता है, वो सब कैसे अडेप्ट करें, कैसे फर्टिलाइजर्स या कैसे पेस्टिसाइड्स वगैरह हम कितना यूज करें, इन सब पे रिसर्च और इन सब पे काम करता है वो, ठीक है। ये ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी 1992 में बनी थी जब अर्थ समिट हुआ था और इसका काम है बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, लैंड डिग्रेडेशन। मतलब अगर जैसे लैंड डिग्रेडेशन मतलब हुआ कि जो वहाँ की सॉइल है उस लैंड की वो उपजाऊ नहीं रहेगी तो फिर वहाँ पर लाइफ ख़त्म हो जाएगी, तो उस तरीके के लैंड डिग्रेडेशन को रोकने के लिए ये सब काम करती है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। तो इसी तरह एक प्रोजेक्ट यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा GEF को फंडिंग दी जा रही थी और GEF फंडिंग दे रहा था भूटान को, एक साकेटंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है भूटान में, ठीक है, साकेटंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि ईस्टर्न भूटान में आती है और चाइना से बिल्कुल भी लगी हुई नहीं है। मतलब वो या तो भूटान से घिरी है या फिर भारत के अरुणाचल प्रदेश से घिरी हुई है, चाइना से वो बाउंड्री शेयर नहीं करती। तो जब ये रिलीज हो रहा था तो चाइना ने उसी समय ऑब्जेक्शन किया कि आप रिलीज नहीं कर सकते, ये चाइना का पार्ट है। लेकिन UNDP में जो रिप्रेजेंट कर रही थी उन्होंने कहा कि नहीं, आपका आपका विरोध दर्ज कर लिया गया है लेकिन आप अभी इस बारे में कुछ नहीं बोल सकते। चाइना को भूटान को फंडिंग रिलीज हो गई ताकि वो साकेटंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पर्यावरण के लिए कुछ काम करे, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि चाइना ये सब क्यों करता है, चाइना का मेन मकसद है भारत को परेशान करना, इसलिए उसने भूटान के उस जगह पर क्लेम किया जो आज तक उसने कभी किया ही नहीं। देखो यार, अब चाइना इतना बुली इसलिए करता है, सबसे बड़ा कारण है वो माओ जेडोंग की फिलोसफी को फॉलो करता है। माओ जेडोंग जिन्हें 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बनाया, रिपब्लिक ऑफ चाइना को बाहर करके या उनके खिलाफ विद्रोह करके, उसकी फिलोसफी है कि भाई जो चाइना इज ए हैंड, तिब्बत इज ए पाम, और जो फाइव हिमालयन स्टेट्स हैं, इंडियन स्टेट्स नहीं, हिमालयन स्टेट्स जैसे नेपाल हिमालयन स्टेट्स है, भूटान नेपाल हिमालयन स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और सिक्किम, ये जो फाइव हिमालयन स्टेट्स हैं ये फिंगर्स हैं, और इस पे उसकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, वो ये इन पांचों स्टेट्स पे कब्जा करना चाहता है। तिब्बत को उसने कर लिया है और इन पांचों स्टेट्स को वो चाइना अपने अंदर मिलाना चाहता है या उन पे कब्जा करना चाहता है। और वो डायरेक्टली जैसे तिब्बत को तो उसने कर लिया 1951 में, उसने तिब्बत पे पूरा जो तिब्बत था उस पर चढ़ाई करके तिब्बत को अपने कंट्रोल में कर लिया। उसके अलावा उसने 1959 में वहाँ के कल्चर को भी ख़त्म करने लगा। जब वो कल्चर को ख़त्म करने लगा तब जाके वहाँ के दलाई लामा ने आगे भारत में शरण ली, ठीक है। तो लेकिन वही चीज़ वो भारत के साथ नहीं कर पाया। 1962 में उसने अक्साई चीन एरिया ले लिया, अरुणाचल प्रदेश भी ले लिया, लेकिन अरुणाचल प्रदेश को वो होल्ड नहीं कर सकता क्योंकि इसके पीछे लॉजिस्टिक रीज़न है, इसलिए उसको अरुणाचल प्रदेश से वापस जाना पड़ा। जो ईस्टर्न सेक्टर है अरुणाचल प्रदेश और जो वेस्टर्न सेक्टर है लद्दाख, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा लड़ाई करता है। इसका कारण ये है कि वहाँ पर उसको एक्सेस है, सही एक्सेस है, और भारत वो ऊंचाई पे है। वहाँ पे जो मिडिल सेक्टर है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, वहाँ पर वो ज़्यादा लड़ाई झगड़ा या फिर उत्पाद नहीं मचाता क्योंकि वहाँ पर ऊंचाई पे भारत है। तो जो ऊंचाई पे होता है युद्ध में, जो अल्टीट्यूड में हायर होता है, वही जंग में भी जीतता है मैक्सिमम, ऐसा देखा गया।
जैसे LOC कारगिल का जब युद्ध हुआ था तो जो पहले ही बंकर में पहुंच गए थे तो वो ऊंचाई पर थे, तो कहा जाता था कि इनको इसका बेनिफिट है इंडियन फोर्सेस के विरोध में।
बहुत ज्यादा बेनिफिट था उस समय पाकिस्तानी आर्मी को, वो पहले से ही ऊंचाई पे थे, लेकिन फिर भी हमारी जो फोर्सेस है, जैसे आपने लक्ष्य मूवी देखी होगी, उसमें कुछ जो लड़ाई दिखाई वो सब भले ही वो छूट थी, लेकिन ऊंचाई पे ही थे पहले से पाकिस्तानी, लेकिन फिर भी हमारी जमान फोर्सेस ने उनको हरा दिया। खैर, अब जैसे ये गालवान वैली है, उसका उसने भी यहाँ पर अभी एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक हुई थी, वांगी जो यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर है और यहाँ पर जो अजीत डोभाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, ठीक है, दे आर द स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑन बॉर्डर टॉक्स। तो उन्होंने बात करी और गालवान वैली और ये सब जहाँ पर ये स्कर्मिशेस हो रहे थे, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि दोनों दो 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 किलोमीटर एक एक किलोमीटर पीछे जाएंगे। अब चाइना ने क्या किया, चाइना पहले ही मान लो अपने LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहाँ से 2 किलोमीटर पहले अंदर आ गया, तो भारत की भूमि में वो 2 किलोमीटर अंदर आ गया, फोर्सेस का सामना कर रहा है। जब डिसाइड हुआ कि भाई नहीं, दोनों फोर्सेस 2-2 किलोमीटर पीछे जाएंगी, तो चाइना 2 किलोमीटर पीछे जाके LAC में आ गया, भारत 2 किलोमीटर पीछे जाके अपने ही एरिया में है, तो जो 4 किलोमीटर का बफर जोन बना वो कहाँ बना, वो बना इंडियन भूमि में। और अभी 3-4 जगह जो लड़ाई हुई, जैसे गलवान वैली में, ठीक है, देवसांग प्लेन में, हॉट स्प्रिंग एक चांग चिन्मो नाम की रिवर है, उसके पास स्थित है चांग चिन्मो एक रिवर है जो कि शियोक की ट्रिब्यूटरी है, शियोक रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। और साथ ही साथ पैंगोंग सो लेक जो है, यहाँ पर जो लड़ाई वगैरह हो रही है, पैंगोंग सो लेक हो गया, हॉट स्प्रिंग हो गया, देपसांग प्लेन हो गया, यहाँ पर इसने 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर कब्जा कर लिया है। और सबसे ज़्यादा पैंगोंग सो में भारत ने अपनी भूमि गंवाई है, जो भारत फिंगर 4 से 8। फिंगर क्या है, फिंगर एक तरह से जो हिली रीजन है, जो कि थोड़ा जो लेक है उसके तरफ थोड़ा आ गया है, थोड़ा मतलब एक तरह से जैसे नुकीलापन है उसका, उसको हम फिंगर से फिंगर बना दिया गया, जो नुकीला पहाड़ पैंगोंग सोक लेक में आ रहा है उसको हम फिंगर नाम देते हैं, ऐसे बहुत सारे नुकीले पहाड़ हैं, तो उनको हम फिंगर नाम दिया गया। तो फिंगर 4 से 8 जहाँ पर के रीजन के बीच में, जो पैंगोंग सो लेक में भारत जो वहाँ पर पेट्रोलिंग करता था, वहाँ तक चाइना आ चुका है, भारत को पेट्रोलिंग करने नहीं दे रहा है, और फिंगर 4 से पीछे हटा है, और भारत भी फिंगर 4 से 1 फिंगर 3 आ गया, तो 2-2 किलोमीटर भारत ने यहाँ पर गवाया। उसके अलावा फिंगर 4 टू फिंगर 8 जो पेट्रोलिंग करता था, जो ग्रे एरिया था, वहां पर भी भारत अब नहीं जा सकता, तो टोटल यहाँ पर 8 से 10 किलोमीटर भारत ने गवाया, जो कि मीडिया नहीं दिखा रही है, समझ रहे हो।
सही बात।
ये बहुत अच्छा आर्टिकल उन्होंने लिखा है, शुक्ला जी हैं कर्नल, रिटायर्ड कर्नल, वो
अजय शुक्ला का बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है ये,
उसी में ये सब सही है, और वो वाकई में इस मायने में अच्छे जानकार मुझे लगते हैं, जो बिल्कुल ही निष्पक्ष बातें करते हैं। इस वजह से हमें लगता है कि उसने बहुत सारी जमीन खोई है, हमने खोई है 2-2 किलोमीटर 1-1 किलोमीटर की, इसके पीछे भी एक पॉलिसी है चाइना इस पॉलिसी का नाम देता है, चाइना इस पॉलिसी को बोलता है सलामी स्लाइसिंग बोलता है उसको, सलामी स्लाइसिंग समझ रहे हो,
स्लाइस कर देना धीरे
धीरे, एक ही बार में वो लद्दाख को
एक एक किलोमीटर करके बढ़ते जाना,
एक एक किलोमीटर करके एक एक किलोमीटर करके एक एक किलोमीटर करके बढ़ रहा है, इसी को सलामी स्लाइसिंग बोलते हैं, बोलो मतलब एक ही बार में लद्दाख को कंट्रोल नहीं किया, लेकिन अभी भी देखिए दो दो किलोमीटर एक एक किलोमीटर आठ आठ किलोमीटर उसने कब्जा कर लिया, और कहीं भी भारत की इसमें जीत नहीं है, सही बताओ भारत ने जमीन खोई है।
जैसे जैसे कि भारत में एक बात होती है कि अखंड भारत का सपना है हमारा, जो कि श्रीलंका से होते हुए अफगानिस्तान तक जाता है, तो वैसे ही चाइना के माओ ज़ेडांग का सपना था, ये जो आपने बताया कि हैंड वाला हाथ का कंसेप्ट,
अखंड चाइना बनाना है उसको भी एक तरह से देखा जाए,
उनका उसको भी एक तरीके से अखंड चाइना बनाना,
मिडिल एजेस में चाइना जितना पावरफुल था उतना ही पावरफुल उसको दोबारा बनाना, बस यही फिलॉसफी है, फिलॉसफी उनकी बहुत खतरनाक है, वो लोग किसी इतने पावरफुल बनने जाना चाहते हैं कि बस देखिए इतना बड़ा होते हुए भूटान जैसे छोटे देश को परेशान कर रहा है, इतना बड़ा देश, तिब्बत की ऑटोनॉमी छीन ली उसने, ठीक है, उसने तिब्बत के जब 1951 में उसने तिब्बत पे कब्जा किया चाइना ने, तो उसने दलाई लामा को बोला था कि भाई आप चिंता मत करो, वी विल प्रोटेक्ट योर कल्चर, 17 पॉइंट एग्रीमेंट किया था उसने, लेकिन 1959 में करीब 8 साल बाद उसने वो भी शर्त तोड़ी, और एक छत्र राज बनाने के लिए उसने वहां का कल्चर, तिब्बत का कल्चर भी डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया, जैसे सिंचियांग प्रांत में वो मुस्लिम कल्चर डिस्ट्रॉय कर रहा है, वैसे ही उसने तिब्बत का कल्चर भी डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके अलावा वो कहता है कि भाई तिब्बत तो शुरू से ही चाइना का पार्ट था, जो एक शिमला अकॉर्ड हुआ था 1914 में, जिसमें तिब्बत, ग्रेट ब्रिटेन, चाइना और प्रिंस ऑफ सिक्किम भी पार्ट थे, उसमें चाइना ने वॉकआउट कर दिया था, ठीक है, और ग्रेट ब्रिटेन में उस समय रिप्रेजेंट किया था सर हेनरी मैकमोहन ने, जिन्होंने बाद में इनर तिब्बत और आउटर तिब्बत का कंसेप्ट दिया, ठीक है, इनर तिब्बत में क्या हुआ था, इनर तिब्बत उन्होंने कहा था इनर तिब्बत जो वो चाइना के अंडर रहेगा, और जो आउटर तिब्बत है जो जिसकी बाउंड्री भारत से लगती है, एक बफर स्टेट बनाने के लिए चाइना से उन्होंने आउटर तिब्बत का कंसेप्ट दिया, और कहा कि आउटर तिब्बत एक सोवरेन नेशन है और ये चाइना का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, ठीक है, उसी समय मैकमोहन लाइन ड्रॉ की गई इंडिया और क्या कहते हैं तिब्बत के बीच में, उसको ही आज मैकमोहन लाइन कहते हैं, उस लाइन को बनाने वाला 1914 में मैकमोहन थे।
मैं भी इसी चीज पे आने वाला था, मैं ये कह रहा था कि एक चीज तो ये जैसे मैकमोहन लाइन है और एक है मैकडॉनल्ड लाइन,
हाँ।
तो इसके बारे में भी आप जब जो आप बातें बता रहे थे पूरा करके इस बारे में भी एक बता दीजिएगा।
हाँ तो यार क्या हुआ था ना कि जो हमारा अक्साई चीन रीजन है जो लद्दाख का ही पार्ट मानते हैं हम लोग, उस पर अभी चाइना का कब्जा है, उसमें एक 1865 में एक कमेटी बनी थी, जॉनसन और आडक दो लोग थे, उन्होंने डिसाइड किया जो अक्साई चीन एरिया है वो इंडिया का पार्ट है, ब्रिटिश इंडिया का पार्ट है, लेकिन उसके बाद उन्होंने ही गड़बड़ करी, 1899 में एक मकार्टनी मैकडोनल्ड लाइन बनी, मकार्टनी मैकडोनल्ड ने डिसाइड किया, जो कि ब्रिटिश के एनवॉय थे इन चाइना, दे वर द ब्रिटिशर्स एनवॉय इन चाइना, कि उन्होंने कहा कि अक्साई चीन इज द पार्ट ऑफ सिंजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना, ठीक है, इसीलिए उसी को बेसिस मान के इंडिया कहता है कि नहीं भाई जॉनसन लाइन के हिसाब से अक्साई चीन हमारा पार्ट है, लेकिन चाइना कहता है नहीं मैकडोनल्ड लाइन को मानेंगे हम और अक्साई चीन इज द पार्ट ऑफ इंडिया, जो कि उसको अभी सिंजियांग प्रांत का पार्ट बताता है जहाँ पर मुस्लिम्स माइनॉरिटी है, और कई बार जब ब्रिटिश इंडिया छोड़ के गया, ब्रिटिश पावरफुल थे तो 1947 तक तो उसने कुछ नहीं किया, ना कर भी पाया कुछ, लेकिन जब ब्रिटिश छोड़ के गए, आपको पता है 1957 तक अक्साई चीन से होते हुए काशगर जो कि सिंजियांग प्रोविंस की कैपिटल है, वहां से लेकर ल्हासा जो कि तिब्बत की कैपिटल है, उसके बीच में एक बहुत बड़ा हाईवे बन गया, और इंडियन गवर्नमेंट को पता ही नहीं चला कि अक्साई चीन जो कि ब्रिटिशर्स उनके लिए छोड़ के गए थे, इंडिया का पार्ट था, वहां पर चाइना हाईवे भी बना चुका है, बहुत बड़ा हाईवे काशगर जो कि सिंजियांग प्रोविंस से लेके ल्हासा तक तिब्बत तक, और ये इंडिया वालों को कब पता चला, जब अखबार में चाइनीज अखबार में इसके बारे में खबर, तो ये हमारी एक तरह से इंटेलिजेंस फेलियर थी, जो सॉफ्ट पावर में नेहरू जी बिलीव करते थे वो भी एक तरह से गलत था,
हिंदी चीनी भाई भाई
का कंसेप्ट जो दिन आ दिया था, ये भी एक तरह से मतलब आप तभी आप शांति स्थापित कर सकते हैं जब आप पावरफुल हो, एक वीक व्यक्ति किसी से शांति स्थापित नहीं कर सकता, और नेहरू जी ने मिलिट्री फोर्सेस पे ध्यान नहीं दिया, उन्होंने कहा कि बस ये गांधी जी और बुद्ध जी का देश है, यहाँ पर हमको मिलिट्री की या पावरफुल बनाने की जरूरत नहीं, इसी का भुगत भुगतान हमको 1962 की लड़ाई में करना पड़ा, जिसमें बहुत बुरी लड़ाई हमारी हार हुई चाइना द्वारा। 10 अक्टूबर 1962 को चाइना ने अटैक किया ईस्टर्न सेक्टर और वेस्टर्न सेक्टर पे, और 40 दिन में ही वॉर खत्म हो गई। वन साइडेड वॉर थी, अपने आप उसने सीज फायर कर दिया। करीब चाइनीज मीडिया के अनुसार करीब 4,500 इंडियन फोर्सेज मरे, और आपको पता है इंडियन फोर्सेज तैयार भी नहीं थी इतनी बड़े बड़े ऊंचाई में, 4,500 फीट 4,500 मीटर से ऊपर ये जंग लड़ी गई थी, ऊंचाई देखिए। और इंडियन फोर्सेस ने किस क्या पहन के लड़ाई किया, पीटी शूज, उनके पास जूते भी नहीं थे। एक मैं बुक बताता हूँ हिमालयन ब्लंडर करके, जो जेपी डलवी की है, उन्होंने इस बारे में लिखा है, मैंने तो पढ़ा नहीं, वैसे पढ़ना है मुझे भी, लेकिन मैंने सुना है कि उन्होंने ही इस बारे में सारी जानकारी दी कि कैसे इंडियन फोर्सेस ने पीटी शूज पहन के इतनी ऊंचाई में, बिहार उत्तर प्रदेश हरियाणा मैदानी इलाकों से आने वाले लोग जाके 4,000-4,500 फीट की ऊंचाई पर लड़ाई करें, तो क्या हर्षण होना था। अगर हम अपने आप को पावरफुल नहीं बनाएंगे तब हमारे साथ यही होगा, और हार गए।
उसी के बाद ही से मिलिटराइजेशन पे काफी ज्यादा ध्यान देना शुरू,
और बहुत जरूरी भी है अभी भी मिलिटराइजेशन में। अभी भी जब CAG की रिपोर्ट वगैरह आती है तो पता लगता है कि अभी भी हम बहुत पीछे हैं।
बहुत
जरूरी है कि हम पावरफुल रहे, जब हमारे बाउंड्री सिक्योर रहेगी तभी हमारा देश भी सिक्योर रहेगा, तभी हम फलेंगे। तो ये चाइना का तो भरोसा
नहीं। एक जो आप ये चीज कह रहे थे कि जब आपके पास पावर होगी तभी आप पीस भी रख पाएंगे, तो मुझे एक बात याद आई कि बराक ओबामा को पीस प्राइज मिला था, और बराक ओबामा के पीस प्राइज मिलने के बाद उन्होंने मिडिल ईस्ट के 7 देशों पे सेना भेज दी थी। तो अगर भारत को भी शांति बनाए रखनी है तो वो तभी शांति बनाए रख सकता है जब अपर हैंड से वो आए और उसकी सेना भी और ज्यादा स्ट्रांग हो, जैसे कि सेना को एक फ्री हैंड देना चाहिए, जैसे जो गलवान क्लैश हुआ। अगर सेना को एक फ्री हैंड होता तो शायद वो चीज नहीं होती।
क्या गांधी जी ने यही बोला था कि भाई एक वीक व्यक्ति कभी भी शांति प्रिय नहीं हो सकता, केवल एक बहादुर आदमी ही शांति पसंद हो सकता है या शांति प्रिय हो सकता है। और इसमें और भी चीजें हैं, जैसे चाइना वाना का जो अभी जंग चल रही है, जो मैंने अभी माओ जेडोंग की फिलोसफी बताया वो जो फॉलो करता है, और ये सब जो मैकडोनल्ड और जैसे मैकमोहन लाइन के बारे में बताया, उसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज हैं हमारे चाइना के साथ, जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ठीक है, एक तरह से वो ट्रोजन हॉर्स है। मतलब अगर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जहां भी चाइना ला रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है कि चाइना का एक रोड कनेक्ट कर रहा है चाइना से लेके यूरोपियन यूनियन तक, जो रोड है उसको उसने बेल्ट का नाम दिया है, और जो सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जो मरीन लाइन है, मरीन जो समुद्र से होते हुए रास्ता जा रहा है, उसको उसने रोड नाम दिया, थोड़ा उल्टा कर दिया इसने, ठीक है। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में कहाँ कह रहा है कि वो सबको कनेक्ट करना चाहता है, जो पुरानी अपने दिन है सिल्क रूट के टाइम के, वही सिल्क रूट, मैरीटाइम सिल्क रूट और एक लैंड सिल्क रूट, वो दोनों बना रहा है, और जहां जहां वहां पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है उस वो कंट्री चाइना के बोझ तले दब जा रही है, क्योंकि वो बोझ पहले लोन दे रहा है, लोन से वो डेवलप कर रहा है, कंट्रीज डेवलप कर रही है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, और जब वो उस तरह रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रही है तो चाइना उसी क्लेम को, उसी डेवलप्ड जोन को अपना क्लेम कर ले रहा है। जैसे उसने अभी हमन टोटा पोर्ट श्रीलंका से 99 साल की लीज में ले लिया, और सोचिए ये सब वो देश है जहां पर उसने $1.5 बिलियन इन्वेस्ट किए। पाकिस्तान में लगभग करीब 40 से 80 बिलियन डॉलर्स, मतलब एक रिपोर्ट आई थी कि 42 के आसपास है, $42 बिलियन इन्वेस्ट कर चुका है, समझ रहे हैं। तो जी चाइना जो पाकिस्तान इसमें कितने कर्ज में डूबा हुआ है, और जो पहले नवाज शरीफ बोलते थे कि ऑल वेदर फ्रेंड है चाइना, और ये सब बड़ी बड़ी बातें करते थे, ये CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो काशगर और उसके पाकिस्तान के पोर्ट को जोड़ता है, ठीक है, ग्वादर पोर्ट को जो कि पाकिस्तान रीजन में है उसको जोड़ता है, वो कहा कि गेम चेंजर है, इसे बहुत डेवलप होगा। लेकिन अभी अब जो इमरान खान की जो गवर्नमेंट है वो थोड़ा चुप हो रही है, उनको पता है कि वो बोझ तले दब रहे हैं चाइना के, चाइना कभी भी इस पे अपनी क्लेम कर सकता है अगर उन्होंने वापस नहीं किया। तो चाइना यही पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है कि भाई क्या कर रहे हो, और इसी यही कारण है कि इंडिया ने ये CPEC बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि इंडिया के जो डिप्लोमेट्स हैं वो बहुत ही काबिले तारीफ काम करते हैं, और उन्होंने कहा साफ साफ कहा है चाइना को, जब तक इसमें ओपननेस और ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, जब तक सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री को 100% बोला नहीं जाएगा कि भाई इस पे कोई आंच नहीं आएगी तब तक भारत इसको ज्वाइन नहीं करेगा, जो कि चाइना ने बहुत देशों से छुपाया। एक सोचिए, एक दूसरे देश में जाके 99 साल की लीज में उसने हमनटोटा फोर्ट ले लिया, ठीक है, उसमें चाइना ही सब कुछ कर सकता है,
जबकि उस देश से उसका डायरेक्ट कोई कनेक्शन भी नहीं है, सीधा साधा कोई संबंध भी नहीं उस देश से।
यही सब है देखो, ये मतलब वो ना ही सिर्फ बाउंड्री से रिलेटेड काम कर रहा है, वो इकोनॉमिकली भी लोगों को कर्ज में दबा के, बाकी देशों में कर्ज में दबा के वहां से भी जमीन हथिया रहा है, भारत के ही नहीं जिनके साथ बाउंड्री नहीं भी है उस देशों में जाके भी वो अपनी जमीन हथिया रहा है, ठीक है,
सही बात।
और एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स उसने नाम दिया है, वो भारत को पूरी तरह से घेर रहा है समुद्री एरिया में, चाहे वो म्यांमार में अपना पोर्ट बना रहा हो, चाहे श्रीलंका में, चाहे जिबूती में, तो उसके खिलाफ भारत ने भी एक शुरू किया स्ट्रिंग ऑफ फ्लावर्स करके, ये सब इनफॉर्मल चीजें हैं, तो भारत ने भी शुरू किया। जैसे कि अभी भारत ने चांगी वो लिया अभी सिंगापुर से, चांगी नेवल बेस उसने सिंगापुर में एक्वायर किया, जहां पर भारत की जो नेवी है वहां पर ना ही सिर्फ रिफ्यूल कर सकती है मगर बल्कि वहां से हथियार भी ले सकती है, हथियार भी अपने उसमें डाल सकती है। उसके अलावा भारत ने भी सेबांग पोर्ट जो इंडोनेशिया में है उसको भी वहां से भी MOU साइन किया। उसके अलावा दुक्कुम पोर्ट है एक ओमान में, क्योंकि चाइना के जिबूती एक जगह है अफ्रीका में, वहां पर भी चाइना का नेवल बेस है, और ग्वादर पोर्ट जो कि चाइना का जो पाकिस्तान में है, उन दोनों के बीच में पड़ता है ये दुक्कुम ओमान का, तो भारत वहां से दोनों उसकी एक्टिविटीज को देख सकता है। उसके अलावा जो चाबहार पोर्ट भारत डेवलप कर रहा है ईरान पे, वो ग्वादर पोर्ट के जस्ट बगल में, वो भी वहां से भी भारत अपने उसकी एक्टिविटीज को देख सकता है कि भाई चाइना क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो भारत भी अपनी तरफ से लगा हुआ है चाइना को पीछे करने में, और चाइना की जो बुली करने का तरीका है उसको, उससे निपटने का।
एक चीज में और बात करना चाहता था जाते जाते, वो ये मैं कहना चाह रहा था कि जैसे आपने बोला कि चाइना जो है भारत को बॉर्डर से घेर रहा है, तो आपको क्या लगता है कि जो अभी गलवान का क्लैश हुआ, फिर इधर भूटान वाले में जो हो रहा है, उसी के साथ उसी टाइम पे इंडिया की थोड़ी नेपाल से भी अनबन हो रही है, और पाकिस्तान तो हर बार की तरह अपना उधर से कुछ ना कुछ सीज फायर का उल्लंघन या ये सब चीजें कर ही रहा है, तो ये भी क्या एक सोची समझी साजिश हो सकती है भारत को दबाने के लिए?
हाँ, चाइना तो शुरू से ही कर रहा है। अभी क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, जहां भी कम्युनिज्म होगा या तो चाइना से रिलेटेड होंगे या रशिया से। रशिया फिर भी कहे कुछ भी कहे तो भारत के साथ हमेशा ही खड़ा रहा है, उस पर हम कह सकते हैं भरोसा कर सकते हैं, लेकिन चाइना पे भरोसा नहीं कर सकते, और कम्युनिस्ट पार्टी की जो सरकार है नेपाल में उसका लिंक चाइना से ही है, तो इसीलिए अभी जो चाइना ने जब नेपाल ने अपनी मैप में चेंजेस करी और काली रिवर के एरिया को पूरा अपने अंडर में बताया, इसके पीछे कहा जा सकता है कि एक तो वहाँ के नेपाली लोगों को खुश करना और साथ ही साथ चाइनीज गवर्नमेंट को खुश करना, जो कि शायद उनको फंडिंग दे रही है या कुछ भी कर रही हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि इंडिया और नेपाल का बहुत पुराना कल्चरल रिलेशन है, दोनों एक तरह से देखा जाए तो मेजोरिटीज में दोनों जगह हिंदू, मतलब अगर रिलीजन की बात करें तो हिंदुइज्म है वहाँ पर भी, और सबसे बड़े ओपन बॉर्डर है, इतने बहुत सारे नेपालीज इंडिया में काम करते हैं, इंडिया में ही काम नहीं करते बल्कि इंडियन आर्म फोर्सेज में, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में काम करते हैं, ठीक है, तो अगर इस तरीके का वो कर रहा है तो वहीं के लोग कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि विद्रोह करना शुरू कर देंगे, और शुरू कर दिया है उन्होंने। चाइना की जो ये रणनीति है नेपाल को अपने अंडर में लेना, वो उसकी लॉन्ग टर्म रणनीति नहीं साबित होगी, सक्सेसफुल नहीं होगी। ये जो कल्चरल कनेक्ट है ना, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट है इंडिया और नेपाल के बीच में, वो बहुत गहरा है, बहुत गहरा रिश्ता है उसका।
जैसे मेरा ही शहर नेपाल बॉर्डर पे है, तो यहाँ पे अभी तो कोरोना का टाइम चालू हुआ, तो जैसे बॉर्डर क्लोज है, वरना रोज का आना जाना है। कई लोग ऐसे हैं भारत के जिनकी दुकान नेपाल में, तो वो सुबह जाते हैं, शाम को आ जाते हैं, वीकेंड में आ जाते हैं, या कई नेपाली ऐसे हैं जिनकी यहाँ पे दुकानें हैं, यहाँ पे या फिर कोई और काम करते हैं, तो यहाँ पे 5 दिन काम करते हैं, 2 दिन के लिए अपने घर चले आते हैं।
वही तो, नेपाल
में सारी चीजें हैं। और काम से बड़ी चीज एक चीज ये भी रही है कि बराबर बेटियों की शादियां होती रही हैं, तो जो राजनाथ सिंह ने कहा था कि कल्चरल भी थोड़ा जुड़ा हुआ है और बेटी रोटी का रिश्ता है, तो वो तो बहुत ही ज्यादा कंक्रीट है। तो ये बात आप काफी सही कह रहे हैं कि इनकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी ये नहीं हो सकती। हमने नेपाल, चाइना और इंडिया, साथ के साथ पाकिस्तान को भी ले लिया, भूटान के बारे में तो बात की, और विकास दुबे के बारे में भी काफी बात की। तो अभिषेक, आप इस पे कुछ और ऐड करना चाहेंगे कि हम लोग अब अपने दर्शकों से, मतलब अपने श्रोताओं से विदाई?
हाँ यार, अब श्रोताओं से विदा लेने का समय आ गया, बहुत अच्छा डिस्कशन लगा आपके साथ करना, होपफुली सबको थोड़ा जितना भी था बताने का।
वैसे ये सब टॉपिक ऐसे हैं जिसमें डिस्कशन चलता रहेगा, चलता रह सकता है, हमें समय की भी पाबंदी है, लोगों पे भी है, करते हैं कंक्लूड इसको।
तो तो मैं अपने श्रोताओं से ये कहना चाहूंगा कि हम लोग इसी तरीके से हर हफ्ते आपसे मिलते रहेंगे और हफ्ते भर की खबरों का जो मेन सुर्खियां है उनका निचोड़ लेकर के आएंगे, साथ के साथ उनसे जुड़ी तमाम बातें जैसे कि आज आपने सुना हमारे इस पॉडकास्ट में, तो वो भी लेकर के आएंगे जो कि यूजुअल मीडिया से अलग बातें हैं, उनके पूरा इतिहास, वो कहाँ से उत्पन्न हुई, आगे कहाँ तक जा सकती हैं, इस सारी चीजों पर हम डिस्कस करेंगे। तो इस पॉडकास्ट को सुनते रहें, जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप इस पॉडकास्ट को सुन रहे हो, चाहे वो गूगल पॉडकास्ट हो, एप्पल पॉडकास्ट हो, स्पॉटिफाई हो, वहां पर इसको फॉलो जरूर करें, पिन टू टॉप कर दें, कमेंट करना ना भूलें और रेटिंग जरूर दें ताकि इस पॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा रेटिंग मिलेगी तो ये पॉडकास्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर करें।
धन्यवाद सभी का, आप सबका धन्यवाद और आदित्य भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं और अभिषेक आपसे फिर अगले हफ्ते मिलेंगे इसी वक्त पे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका
भाई, आपका भी और सभी श्रोताओं का भी शुक्रिया।
धन्यवाद।